पृष्ठ संख्या 118, नवम अध्याय, बुद्धिवाद, लाइबनिट्ज़, गॉटफ्रीड विलहेल्म लाइबनिट्ज़, 1646 से 1716। लाइबनिट्ज़ का जन्म जर्मनी के लाइपजिग नगर में हुआ था। पिता स्थानीय विश्वविद्यालय में आचार दर्शन के अध्यापक थे और लाइबनिट्ज़ को 6 वर्ष का छोड़कर चल बसे थे। बचपन से ही लाइबनिट्ज़ को पिता के पुस्तकालय में पढ़ने का शौक लग गया। अपनी असाधारण बहुमुखी प्रतिभा और स्मरण शक्ति के कारण लाइबनिट्ज़ कई विषयों के पारंगत विद्वान हो गए। ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच आदि कई भाषाएं वे जानते थे और गणित, भौतिक विज्ञान, दर्शन, विधि, इतिहास और अर्थशास्त्र के प्रकांड पंडित थे। 20 वर्ष की आयु में ही उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई थी। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने विश्वविद्यालय के अध्यापक का पद जो उन्हें मिल रहा था स्वीकार नहीं किया। वे मैज के प्रधान पादरी के राजनीतिक विभाग में काम करने लगे और इसी सिलसिले में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के पास सम्राट को धर्म विरोधी मिस्र पर आक्रमण करने की सलाह देने पेरिस गए। अपने दूत कार्य में तो वे सफल नहीं हुए, किंतु 4 वर्ष पेरिस में रहने और वहीं से लंदन आदि नगरों में घूमने के कारण उनको नूतन विज्ञान, गणित और दर्शन के अध्ययन का अवसर मिला। इस काल में मेले ब्रांच और स्पिनोजा के संपर्क में आए। जर्मनी लौटकर वे हनोवर के राजकीय पुस्तकालय के अध्यक्ष पद पर कई वर्षों तक रहे। उनकी कीर्ति चारों ओर फैली। कई पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छपे। उनकी विद्वता की धूम मची। उन्होंने गणित के कलन या कैलकुलस का, जिसका उनके समकालीन वैज्ञानिक न्यूटन ने भी स्वतंत्र आविष्कार किया था, स्वतंत्र रीति से आविष्कार किया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मतों में संधि कराने का उन्होंने प्रयत्न किया और इस पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा। बर्लिन में उन्होंने विज्ञान संस्था एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना की। जीवन के अंतिम दिनों में वे आश्रयहीन से हो गए और लोगों ने उन्हें भुला दिया। इस उपेक्षित अवस्था में ही उनकी मृत्यु हुई। लाइबनिट्ज़ में बहुमुखी प्रतिभा और असाधारण स्मरण शक्ति थी। चरित्र बल विशेष नहीं था। वे वैभव प्रिय और पक्के दुनियादार व्यक्ति थे। पृष्ठ संख्या 119। जीवन के अंतिम दिनों को छोड़कर उन्होंने ख्याति और वैभव का जीवन बिताया। विविध मतों का समन्वय करना उनके दर्शन का लक्ष्य है। चिदड़ू शास्त्र या मोनाडोलॉजी उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक पुस्तक है। द डेकार्त और स्पिनोजा के समान लाइबनित्ज भी बुद्धिवादी हैं। डेकार्त द्वैतवादी, स्पिनोजा अद्वैतवादी और लाइबनित्ज द्वैतावादी हैं। डेकार्त ने ईश्वर, चित और अचित रूपी तत्व त्रय की प्रतिष्ठा की। स्पिनोजा ने चित और अचित को गुण मानकर अद्वैत तत्व की प्रतिष्ठा की। द्रव्य या तत्व की परिभाषा में डेकार्त और स्पिनोजा दोनों सहमत हैं। दोनों के अनुसार द्रव्य का लक्षण स्वतंत्र और निरपेक्ष सत्ता है। लाइबनित्ज इस परिभाषा से असंतुष्ट हैं। डेकार्त चित और अचित को दो परस्पर विरोधी द्रव्य मानते हैं। चित का गुण चैतन्य और अचित का विस्तार मानते हैं और चैतन्य तथा विस्तार में विरोध स्वीकार करते हैं। जो चेतन है वह अचेतन नहीं हो सकता और जो अचेतन है यह चेतन नहीं हो सकता। लाइबनित्ज इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि चेतन आत्मद्रव्य को अचेतन और उपचेतन प्रतीतियां भी होती हैं। आत्मा की चार चित्त भूमियां हैं, स्वचेतन, चेतन, उपचेतन और अचेतन या सेल्फ कॉन्शियस, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। उपचेतन और अचेतन मानसिक दशाओं को लाइबनित्ज ने लघु चेतना या पेटिट परसेप्शंस नाम दिया है। अतः डेकार्त का चेतन अचेतन का द्वैतवाद ध्वस्त हो जाता है। लाइबनित्ज के इस चित्त भूमियों के सिद्धांत को प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने अपनाया है। लाइबनित्ज के अनुसार केवल चैतन्य को ही आत्मा का गुण नहीं मान सकते। इसी प्रकार डेकार्त की अचित संबंधी मान्यता भी दोषपूर्ण है। डेकार्त ने विस्तार को ही अचित का गुण और गति तथा स्थिति को विस्तार का पर्याय माना है। यह गलत है। प्रथम तो डेकार्त में गति का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, इसमें अन्य प्रकार के परिवर्तन नहीं आते। जैसे सेव का पककर हरे रंग से लाल रंग में बदल जाना, जैसे बालक का युवक और युवक का वृद्ध हो जाना। द्वितीय, जब दो गतिशील पदार्थ एक दूसरे से टकराते हैं तो उनका वेग कम हो जाता है, किंतु यदि पदार्थों का गुण विस्तार है तो उनका वेग या गति बढ़नी चाहिए। तृतीय, पदार्थों में कभी गति होती है कभी स्थिति, किंतु अविच्छिन्नता के सिद्धांत या लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार गति या स्थिति में व्यवधान नहीं होना चाहिए। जब एक गतिशील पदार्थ रुककर स्थिर हो गया तब फिर उसमें दोबारा गति क्यों होती है? विस्तार से तो ऐसा नहीं हो सकता। पृष्ठ संख्या 120। अतः जड़ पदार्थों का गुण विस्तार नहीं माना जा सकता। चतुर्थ, जहां विस्तार है वहां विभाग भी है। अतः यदि विस्तार जड़ पदार्थ का गुण है तो कोई जड़ पदार्थ मूल द्रव्य के अर्थ में सिद्ध ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि मूल द्रव्य को अविभाज्य मानना पड़ेगा और विस्तार के कारण वह अविभाज्य हो नहीं पाएगा। इस प्रकार लाइबनित्ज ने डेकार्त के मत का खंडन किया। उनके अनुसार न तो आत्मा और जड़ दो विरुद्ध द्रव्य हैं और न चैतन्य तथा विस्तार दो विरुद्ध गुण, और न केवल चैतन्य आत्मा का गुण है और न केवल विस्तार जड़ पदार्थ का। लाइबनित्ज ने स्पिनोजा के अद्वैतवाद का भी घोर विरोध किया। स्पिनोजा ने डेकार्त के द्वैतवाद का खंडन करके चित और अचित को द्रव्य पद से उतार कर गुण के आसन पर बिठा दिया। स्पिनोजा ने द्रव्यों के द्वैत को मिटाकर गुणों के द्वैत को रहने दिया। स्पिनोजा भी चैतन्य और विस्तार नामक गुणों को परस्पर भिन्न मानते हैं। लाइबनित्ज को यह भी पसंद नहीं। लाइबनित्ज का आक्षेप है कि एक ही द्रव्य में चैतन्य और विस्तार जैसे विरोधी धर्म कैसे रह सकते हैं। पुनश्च स्पिनोजा ने चेतन और जड़ जगत के संपूर्ण पदार्थों के व्यक्तित्व का अपहरण कर लिया और इनकी सत्ता को ही उड़ा दिया। यह लाइबनित्ज को नितांत अनुचित लगा। लाइबनित्ज के अनुसार डेकार्त और स्पिनोजा की असफलता का और उनके दर्शन में पाए जाने वाले विरोधों का कारण यह है कि उन दोनों ने द्रव्य के लक्षण को ठीक ठीक नहीं समझा। उन्होंने द्रव्य को दर्शन का केंद्र बनाया, यह ठीक किया। उन्होंने द्रव्य का लक्षण स्वतंत्र माना, यह भी ठीक किया, किंतु आगे वे गलती कर गए। स्वतंत्र का अर्थ उन्होंने समझा स्वतंत्र सत्ता, यह ठीक नहीं। स्वतंत्र का अर्थ स्वतंत्र सत्ता नहीं, स्वतंत्र शक्ति है। अतः द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य वह है जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो, न होकर यह होनी चाहिए द्रव्य वह है जिसमें स्वतंत्र शक्ति हो। वस्तुतः शक्ति ही सत्ता है। सत्ता का अर्थ होना चाहिए अर्थ क्रिया सामर्थ्य। जो अर्थ क्रिया समर्थ है वही सत है। सक्त पदार्थ को ही द्रव्य कहा जा सकता है। जिसमें अपनी स्वतंत्र शक्ति हो वही द्रव्य है। इस चिद्रूप विश्व के प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ अपनी शक्ति है। प्रत्येक पदार्थ की अपनी विशेषता है। पृष्ठ संख्या 121। अतः प्रत्येक पदार्थ जिसमें अपनी शक्ति और विशेषता हो द्रव्य कहलाने का पात्र है। लाइबनित्ज का द्रव्य है शक्तिमान विशेष या सेल्फ एक्टिव इंडिविजुअल। डेकार्त ने तीन द्रव्य माने थे और स्पिनोजा ने एक ही रहने दिया था, किंतु लाइबनित्ज ने असंख्य द्रव्यों की कल्पना की। स्पिनोजा का ईश्वर खंड खंड होकर लाइबनित्ज के द्रव्यों में बिखर पड़ा। स्पिनोजा ने चेतन और जड़ पदार्थों की जिस सत्ता का अपहरण कर लिया था, लाइबनिट्ज़ ने वह उन्हें लौटा दी। लाइबनिट्ज़ ने अपने द्रव्य का नामकरण किया चिदड़ु या मोनाड। यह नाम उन्होंने ब्रूनो से लिया, जिनके दर्शन के कुछ विचारों की छाप लाइबनिट्ज़ पर पड़ी है। अपने चिदड़ु की कल्पना में लाइबनिट्ज़ ने डेकार्त के बुद्धिवाद से और जड़ पदार्थ विज्ञान के विचारों से सहायता ली है। डेकार्त के स्वतंत्र सत्तावान द्रव्य को लाइबनिट्ज़ ने स्वतंत्र शक्तिमान द्रव्य में और जड़ पदार्थ विज्ञान के जड़ परमाणु को चेतन परमाणु में परिणत करके दोनों को एक में मिला दिया है। लाइबनिट्ज़ का द्रव्य स्वतंत्र शक्तिमान चेतन परमाणु है। लाइबनिट्ज़ ने गणित से और जड़ पदार्थ विज्ञान से फिर सहायता ली है। गणित के बिंदु निर्वयव और अविभाज्य हैं, किंतु वे तात्विक नहीं हैं, काल्पनिक हैं। जड़ पदार्थ विज्ञान के बिंदु अर्थात परमाणु तात्विक तो है, किंतु निर्वयव और अविभाज्य नहीं। जड़ पदार्थ विज्ञान अपने परमाणुओं को निर्वयव और अविभाज्य मानता है, किंतु लाइबनिट्ज़ उससे सहमत नहीं है। लाइबनिट्ज़ के अनुसार जब परमाणुओं की आकाश में स्थिति है और जब वे जड़ हैं, तो उनका विस्तार अवश्य होना चाहिए। लाइबनिट्ज़ ने अपने चिदड़ू में इन दोनों प्रकार के बिंदुओं के गुणों का मिश्रण करके एक नए प्रकार के बिंदु की कल्पना की है। चिदड़ू में परमाणु की तात्विकता है, किंतु उसकी विभाज्यता और जड़ता नहीं। चिदड़ू में गणित के बिंदु की अविभाज्यता है, किंतु उसकी काल्पनिकता और अचेतनता नहीं। लाइबनिट्ज़ का चिदड़ु निर्वय अविभाज्य तात्विक और चेतन है। यह तात्विक बिंदु द्रव्य बिंदु या चिद बिंदु है। यह शक्तिमान विशेष है। यह अपनी शक्ति का स्वयं केंद्र है। यह अनादि अनंत और नित्य है। विश्व में ऐसे असंख्य चिदड़ु हैं। प्रत्येक चिदड़ु विश्व के अन्य समस्त चिदड़ुओं को अपने भीतर प्रतिबिंबित करता है। चिदड़ु चित शक्ति का केंद्र है और अपनी चित शक्ति के कारण समस्त विश्व को अपने भीतर प्रतिबिंबित करता है। समस्त विश्व का अर्थ है समस्त चिदड़ु और उनके प्रतिबिंब, क्योंकि विश्व में चिदड़ुओं और उनके प्रतिबिंबों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पृष्ठ संख्या 122। इस प्रकार लाइबनिट्ज़ के अनुसार समस्त विश्व चिन्मय है, चैतन्य के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है। प्रत्येक चिदड़ु में समस्त विश्व ज्ञान रूप में समाया हुआ है। व्यष्टि में समस्त का प्रतिबिंब है, अणु में विराट भरा पड़ा है। प्रत्येक चिदड़ु समस्त विश्व का एक जीवित दर्पण है। चैतन्य के अतिरिक्त, चित शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है। ऐसा कहकर लाइबनिट्ज ने स्पिनोजा का चैतन्य और विस्तार का गौण द्वैत भी समाप्त कर दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि चैतन्य के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं तो इस जड़ जगत का क्या होगा? लाइबनिट्ज का उत्तर है कि जड़ नामक कोई वस्तु नहीं है। जिसको जड़ समझते हैं वह गुप्त या सुप्त चैतन्य है वह चैतन्य ही किंतु प्रकट नहीं है, सोया हुआ है, खोया हुआ सा है। लाइबनिट्ज ने चैतन्य को चार भूमियां मानी है, स्वचेतन, चेतन, उपचेतन और अचेतन। अचेतन का अर्थ चेतन का अभाव नहीं है अपितु चेतन की कमी है। अचेतन का अर्थ है ईर्षत चेतन। यहाँ चेतना सुप्त या मूर्छित रहती है। उपचेतन में चेतना स्वप्न स्थित जैसी रहती है। चेतन में चेतना जागृत रहती है। स्वचेतन में चेतना अपना स्वसंवेदन करती है। अतः विश्व में चेतना के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अचेतन और उपचेतन को लाइबनिट्ज ने लघु चेतना या पेटिट परसेप्शन कहा है। चेतन सदा स्वचेतन हो यह आवश्यक नहीं। लाइबनिट्ज ने समुद्र की गर्जना के उदाहरण से इसे स्पष्ट किया है। समुद्र की प्रत्येक तरंग थोड़ी बहुत ध्वनि करती है और उसका संवेदन हमारी श्रोतेंद्रिय को होता अवश्य है, किंतु यह ध्वनि संवेदन मात्र ही रहती है। इसका ज्ञान हमें नहीं होता। हमें तो समुद्र की गर्जना ही अर्थात तरंगों की सामूहिक ध्वनि ही सुनाई देती है। समुद्र की गर्जना विविध तरंगों की ध्वनि से मिलकर बनती है। तरंगों की पृथक पृथक ध्वनि का संवेदन होता है और सामूहिक ध्वनि या गर्जना का ज्ञान। अचेतन और उपचेतन की छीण चेतना होती है। अतः चेतना शून्य कुछ नहीं है। प्रत्येक चिदड़ु व्यक्त विशेष है। वह अपनी चित शक्ति का केंद्र है और उसकी अपनी विशेषता है। चित शक्ति एक नहीं है जो अनेक चिदड़ुओं में अव्यक्त होती हो। चित शक्ति अविभाज्य है। अतः वह खंड खंड होकर विभिन्न चिदड़ुओं में नहीं रह सकती। पृष्ठ संख्या 123। यदि एक ही अविभाज्य चित शक्ति की अनंत चिदड़ुओं में अभिव्यक्ति मानी जाए तो चिदड़ु शक्ति के आभास मात्र बन जाएंगे और उनका सत्यत्व नष्ट हो जाएगा, जो लाइबनिट्ज को कदापि अभिष्ट नहीं। ऐसा होने पर लाइबनिट्ज का सिद्धांत बहुत कुछ स्पिनोजा के समान हो जाएगा और लाइबनिट्ज को यह कभी स्वीकार नहीं। इसलिए लाइबनिट्ज ने प्रत्येक चिदड़ू के व्यक्तित्व और उसकी विशेषता को बहुत अधिक महत्व दिया है। प्रत्येक चिदड़ू में अपनी स्वतंत्र और अविभाज्य शक्ति है। हाँ, चिदड़ुओं में तात्विक भेद या मौलिक स्वरूप भेद लाइबनित्ज को मान्य नहीं है, इसलिए वे प्रत्येक चिदड़ु की शक्ति को स्वतंत्र और अविभाज्य मानते हुए भी मौलिक स्वरूप की दृष्टि से समान अर्थात एक सी या एक ही नहीं मानते हैं। प्रत्येक चिदड़ु अपनी स्वतंत्र सत्ता या शक्ति रखते हुए भी अपने मौलिक स्वरूप में अन्य समस्त चिदड़ुओं के समान है। चिदड़ुओं में संख्या का भेद या क्वांटिटेटिव डिफरेंस है, मौलिक स्वरूप का भेद या क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है। प्रत्येक चिदड़ु के विशिष्ट व्यक्तित्व पर लाइबनित्ज ने बहुत बल दिया है। प्रत्येक चिदड़ु अपने आप में पूर्ण है, उसकी अपनी निरपेक्ष चित शक्ति है। वह अपनी सत्ता या शक्ति के लिए ईश्वर के अतिरिक्त या ईश्वर का स्वरूप आगे समझाया जाएगा, अन्य किसी पर निर्भर नहीं। चिदड़ु में कोई छिद्र या खिड़कियां नहीं जिनमें होकर कोई वस्तु भीतर से बाहर जा सके या बाहर से भीतर आ सके। चिदड़ु छिद्र रहित या गवाक्षहीन या विंडोलेस है। वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते, प्रभावित करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक चिदड़ु अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक चिदड़ु में समस्त विश्व बीज रूप में अर्थात ज्ञान रूप में विद्यमान है। यहाँ एक शंका होती है। एक ओर तो लाइबनित्ज कहते हैं कि प्रत्येक चिदड़ु समस्त विश्व का जीवित दर्पण है, और दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि प्रत्येक चिदड़ु छिद्र रहित या गवाक्षहीन है। यदि प्रत्येक चिदड़ु में समस्त विश्व प्रतिबिंबित है तो यह कैसे कहा जाता है कि उसमें किसी प्रकार का आदान प्रदान संभव नहीं, कि न तो वह किसी को प्रभावित कर सकता है और न किसी से प्रभावित हो सकता है। इस विरोधाभास का परिहार लाइबनित्ज ने इस प्रकार किया है। प्रत्येक चिदड़ु पूर्ण है, क्योंकि उसमें समस्त विश्व बीज रूप में अंतर्निहित है। वस्तुतः चिदड़ुओं में कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता, प्रत्येक चिदड़ु परस्पर निरपेक्ष है। प्रत्येक चिदड़ु समस्त विश्व को प्रतिबिंबित करता है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि समस्त विश्व चिदड़ु में बीज रूप से विद्यमान है। पृष्ठ संख्या 124। चिदड़ु में समस्त विश्व का इतिहास विद्यमान है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ उसमें अंतर्निहित है, क्योंकि भूत अपने चिन्ह वर्तमान में छोड़ जाता है और वर्तमान के बीज ही भविष्य के रूप में प्रतिफलित होते हैं। समस्त विश्व को प्रतिबिंबित करने का अर्थ है अपनी ही चित्त शक्ति का विकास करना समस्त विश्व का अर्थ है चित्त शक्ति, क्योंकि चित्त शक्ति के अतिरिक्त विश्व में और कुछ नहीं है। प्रत्येक चिदड़ु में चित्त शक्ति के रूप में समस्त विश्व विद्यमान है, किंतु है बीज रूप में ही, विकसित रूप में नहीं। इस सुप्त शक्ति का जागृत करना, अधिकाधिक चैतन्य प्राप्त करना, अधिकाधिक सक्रिय होना ही विश्व को प्रतिबिंबित करना है। यह अपनी ही सुप्त शक्ति की जागृति है, अपनी ही गुप्त शक्ति का प्राकट्य है। अतः इसमें बाह्य प्रभाव का प्रश्न नहीं उठता। जब सब कुछ भीतर ही है तो बाहर से क्या लिया जाए। इस प्रकार लाइबनिट्ज ने इस विरोधाभास का चिदड़ू छिद्र रहित होते हुए भी समस्त विश्व को अपने भीतर प्रतिबिंबित करता है परिहार करने की चेष्टा की है। इसमें एक बात और स्पष्ट हो जाती है, वह है चिदड़ुओं का तारतम्य। चिदड़ू मौलिक स्वरूप में अर्थात चित शक्ति में समान होते हुए भी इस शक्ति के क्रियान्वित विकास में विभिन्न हैं। समस्त चिदड़ू एक ही विश्व को प्रतिबिंबित करते हैं, किंतु विभिन्न रूपों में। सबके प्रतिबिंब समान नहीं है, क्योंकि सबका विकास समान नहीं है। शक्ति सब में बराबर है, किंतु उस शक्ति को क्रियान्वित करके सबने एक रूप में नहीं पा लिया है। उदाहरणार्थ सब मनुष्यों में शक्ति है कि वे एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें, किंतु वास्तव में करते कितने हैं। बुद्धि बीज रूप में स्वरूपतः मानव मात्र में है, किंतु इसका विकास अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग रूप में होता है। इसके लिए परस्पर संबद्ध सोपानवत श्रेणियां बनानी पड़ती है। कोई दसवीं कक्षा उत्तीर्ण है, कोई 11 या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है, कोई बीए है और कोई एमए है। इसी प्रकार चिदड़ुओं में भी शक्ति के वास्तविक विकास की दृष्टि से श्रेणियां हैं। यह तारतम्य अखंड है, इसमें श्रृंखला टूटती नहीं, इसमें व्यवधान नहीं है। चिदड़ुओं का ज्ञान छीणतम, छीणतर, छीण अस्पष्ट, अस्पष्टतर और अस्पष्टतम श्रेणियों में रखा जा सकता है। कुछ चिदड़ु सो रहे हैं, कुछ स्वप्न देख रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। लाइबनिट्ज के अनुसार चिदड़ुओं को हम 5 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। वस्तुतः प्रत्येक चिदड़ु की अपनी अलग ही श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक चिदड़ु का ज्ञान अपनी विशेषता रखता है और 2 चिदड़ुओं में विश्व का प्रतिबिंब बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। पृष्ठ संख्या 125। विश्व में न अनावश्यकता है न पुनरावृत्ति। प्रत्येक चिदड़ु का अपना अलग विश्व है, अतः उतनी ही श्रेणियां हैं जितने चिदड़ु, किंतु फिर भी समान प्रतिबिंबों के आधार पर स्थूल रूप में 5 श्रेणियां बताई गई हैं। प्रथम श्रेणी में आते हैं अचेतन अर्थात ईसत चेतन चिदड़ू जिनको लोक में जड़ जगत कहा जाता है। इनमें चैतन्य सुप्त या मूर्छित रहता है। यह चैतन्य का क्षीणतम स्तर है क्योंकि इसमें क्षीणतम संवेदन मात्र होता है। उपनिषद में इसको अन्नमय कोश कहा गया है। द्वितीय श्रेणी है उपचेतन चिदड़ू कि जिसे लोक में वनस्पत जगत कहा जाता है। इसमें चैतन्य स्वप्न स्थित सा रहता है। यह क्षीणतर संवेदन का स्तर है जहाँ प्राण स्पंदन होने लगता है। उपनिषद में इसको प्राणमय कोश कहा गया है। अचेतन चिदड़ू और उपचेतन चिदड़ू दोनों को लाइबनिट्ज़ ने साधारण या नग्न चिदड़ू या सिंपल और नेक्ड मोनाड्स नाम दिया है। तृतीय श्रेणी में आते हैं चेतन चिदड़ू या सोल मोनाड्स जिनको लोक में पशु जगत कहा जाता है। इनमें चैतन्य जागृत रहता है। यह अस्तर क्षीण ज्ञान और अस्पष्ट संवेदन का है अतः इसे क्षीण अस्पष्ट अस्तर कहा है। यह सहज मानसिक प्रवृत्तियों या इन इंस्टिंक्ट्स का अस्तर है। उपनिषद में इसे मनोमय कोश कहा गया है। यह चिदड़ू जीव कहे जाते हैं। चतुर्थ श्रेणी है स्वचेतन चिदड़ू या स्प्रिट मोनाड की जिसे लोक में मानव जगत कहा जाता है। यह आत्म जगत है। यह स्पष्टतर ज्ञान का स्तर है क्योंकि यह चेतन स्वचेतन या सेल्फ कॉन्शियस बन जाता है। उपनिषद में इसको विज्ञानमय कोश कहा गया है। पंचम और अंतिम श्रेणी में केवल एक ही चिदड़ू है। वह है परम चिदड़ू या ईश्वर या गॉड मोनाड्स आर क्वीन मोनाड जिनका ज्ञान अस्पष्टतम है। यह दिव्य जगत है। उपनिषद में इसे आनंदमय कोश कहा गया है। यह पुरुषोत्तम का स्तर है। ये सब श्रेणियां परस्पर संबद्ध है। ऊपर की श्रेणी में नीचे की सब श्रेणियां आ जाती हैं। कोई वस्तु छूटती नहीं। नीचे की श्रेणी का आदर्श ऊपर की श्रेणी में जाना है। इन श्रेणियों में केवल विकास का भेद है, जातिगत भेद नहीं है। लाइबनिट्ज़ का संकेत विकासवाद की ओर है। यद्यपि सभी चिदड़ू अपनी शक्ति के केंद्र हैं तथापि वस्तुतः स्वतंत्र तो केवल स्वचेतन चिदड़ू है। स्वतंत्र का अर्थ लाइबनिट्ज़ भी स्पिनोजा के समान ज्ञान तंत्रता मानते हैं। स्वतंत्र का अर्थ है ज्ञान तंत्र अर्थात न अतंत्र और न परतंत्र और यह आत्म चिदड़ुओं में ही संभव है। पृष्ठ संख्या 126। सभी चिदड़ुओं का लक्ष्य है सर्वोत्तम चिदड़ु या ईश्वर के समान बनना। ज्यों ज्यों चिदड़ु इस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों वे अधिक ज्ञान तंत्र और उच्चतर होते जाते हैं, अधिक विकसित और सक्रिय होते जाते हैं। यह है चिदड़ुओं के तारतम्य का वर्णन। यहाँ पर यह शंका उत्पन्न होती है कि जब सभी चिदड़ु अपनी स्वतंत्र चित्त शक्ति के केंद्र हैं और अपने भीतर संपूर्ण विश्व लिए हुए हैं तथा मौलिक स्वरूप में समान हैं, तो उनमें तारतम्य हो ही कैसे सकता है? चिदड़ु क्यों नहीं एक साथ अपनी शक्ति का पूर्ण विकास कर लेता? उसकी शक्ति को रोकने वाला कौन है? क्या कारण है कि चिदड़ुओं के प्रतिबिंबों में छीड़ और स्पष्ट आदि का तारतम्य करना पड़ता है? लाइबनित्ज का उत्तर है कि शक्ति का असली अर्थ है चित्त शक्ति। यह चित्त शक्ति अपने पूर्ण क्रियान्वित अर्थात विकसित और अनिरुद्ध रूप में केवल ईश्वर में ही हो सकती है। ईश्वर ही सच्चे अर्थ में पूर्ण क्रियान्वित शक्ति या पुरुष एक्टस हैं। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सब चिदड़ुओं में शक्ति वरोध का बीज विद्यमान है जो उनकी शक्ति को रोकता है। इस बीज को लाइबनित्ज ने सूक्ष्म जड़ता या मैटेरिया प्राइम कहा है। जब यह बीज मूर्त या कॉर्पोरियल का रूप लेता है तो तब इसे स्थूल जड़ता या मैटेरिया सेकंड कहा जाता है। ईश्वर के अतिरिक्त सभी चिदड़ुओं में यह सूक्ष्म जड़ता न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान रहती है और इसीलिए चिदड़ुओं में विकास का तारतम्य है। इनमें यह लक्ष्य जड़ता अधिक है, वे कम क्रियाशील और विकसित हैं और जिनमें कम है वे अधिक क्रियाशील और विकसित हैं। यह सूक्ष्म जड़ता वेदांत की अविद्या के समान है। यह क्यों और कहां से आई, इसका लाइबनित्ज के पास कोई उत्तर नहीं।